نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير سبق نمبر 133 آیت نمبر 51 سے 99 سورۃ ہجر لیسن نمبر 133 آیت نمبر 51-99 سورۃ ہجر آیتوں پہ جانے سے پہلے تھوڑا سا سبق کا خلاصہ آج کے سبق میں ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے ناطے سے اللہ تعالیٰ کی سنت دیکھیں گے اس سبق سے پیچھے والی آیات میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی متضاد صفات کا ذکر دیکھا تھا کہ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم اور ان عذابی هو العذاب العلیم یہاں ہمیں اللہ تعالیٰ کی یہ دونوں صفات دکھیں گی کہ کیسے جھٹلانے والی قوموں کو اللہ نے بالآخر پکڑا اور وہ انبیاء کرام جو وقت سے معاشرے سے مختلف چال چلتے ہوئے دکھتے تھے ان کو کیسے بچا لیا اور انہوں نے اللہ کا حکم مانا دوسری چیز جو اس سبق میں ہمیں دکھے گی وہ کیا ہے کہ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہیں ہونا پھر قوموں کے حالات میں جو چیز ہمیں سمجھ آئے گی سبق کے اندر وہ کیا ہے کہ جب لوگ نبیوں کی موجودگی میں بھی غلط کام نہیں چھوڑتے تو اللہ تعالیٰ کی ان کے ساتھ کیا پکڑ ہوتی ہے اور نفس کی باتیں کن لوگوں کو ماننا آسان لگتا ہے اور پھر سبق کے آخر میں ہم بہت ہی خوبصورت آیات دیکھیں گے کہ جس کو قرآن مل جائے کیا اس کو کسی اور دوسری طرف دیکھنے کی ضرورت ہے یعنی کہہ سکتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ سے ایک موضوع جو چلتا آ رہا تھا انشاءاللہ اس سبق میں ہم اس کے بارے میں دیکھیں گے اور پھر آخر میں ہم دیکھیں گے کہ دین کا کام کب تک کرنا ہے حتی یاتیک الیقین یعنی موت تک آئیے آیتوں کو لیتے ہیں شروع کا حصہ بہت آسان ہے قصہ ہے کہانی ہے اور پیچھے ایک دو بار آپ نے پڑھی بھی ہے لیکن جب بھی پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کو اس میں سے عمل کی نئی باتیں ملیں گی اور ہم صرف یہاں کہانیوں کے لیے نہیں پڑھتے ہم عمل کے لیے پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 51 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَنَبِّئْهُمْ عَن ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ اور ان کو ذرا بتائیے ابراہیم کے مہمانوں کے بارے میں کیا ہوا اس دخلوا علیہ فقالوا سلاما جب وہ داخل ہوئے آپ کے ہاں تو انہوں نے سلام کیا جواب میں ابراہیم بولے قال انا منکم وجلون آپ نے کہا ہمیں تو تم سے خوف آ رہا وہ بولے قال لا توجل انا نبشرک بغلام علیم انہوں نے کہا کہ ڈریے نہیں ہم آپ کو ایک صاحب علم بیٹے کی بشارت دیتے ہیں ابراہیم بولے قال بشرتمونی کیا آپ مجھے خوشخبری دے رہے ہیں جبکہ الا ام مسنی الکبر فبما تبشرون باوجود اس کے کہ مجھ پر بڑھاپا طاری ہو چکا تو تم مجھے کیسی خوشخبری دیتے ہو فرشتے بولے قالوا بشرناک بالحق ہم تو آپ کو حق کے ساتھ بشارت دے رہے ہیں اس لیے فلا تکم من القانتین تو آپ نا امید لوگوں میں سے نہ ہو جائیے تو ابراہیم اس بات کو سن کر بولے قال ومن یقنت من رحمت ربه الا الضالون آپ نے کہا کہ کون ہوگا جو اپنے رب کی رحمت سے مایوس ہو سوائے گمراہوں کے یعنی گمراہ لوگوں کے سوا کوئی مایوس نہیں ہوتا یہاں سے آگے پھر باتیں اور آئیں گی لیکن ان آیات کو پڑھتے ہوئے سورۃ کے آغاز کی وہ آیات ذہن میں رکھ لیجئے جب مشرکین مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا تھا کہ ہمارے پاس فرشتے آئیں اور ہم ان فرشتوں کو دیکھیں تو کیا کہا گیا کہ فرشتے تو حق کے ساتھ آتے ہیں یہاں فرشتوں کے آنے کی بات کر دی گئی کہ دیکھو جب فرشتے آئیں گے تو اس وقت یا تو پھر وہ عذاب کی خبر لے کر آئیں گے کیونکہ تم نے وقت کے نبی کو ستایا اور ان کی بات نہیں مانی اور اگر تم اس عرصے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مان چکے ہوں گے तो फिर फरिश्ते आएंगे तुम्हारी निजात की खबर लेकर। आयत नंबर 7 और 8 में ये बात आई थी। यहाँ इतनी आयतों के बाद अब नबी सल्लम को कहानी सुनाई जा रही है। जहाँ भी आप अंबिया कराम के किस्से पढ़ें, जहन में रखिए कि ये मक्का के उस दौर की कहानी है जब नबी सल्लम को बहुत सताया जा रहा था। किस तरह से लोग अल्लाह ताला के नबियों की जब कदर नहीं कर पाते तो अल्लाह ताला उनको इस तरीके से लोगों के सामने ले आता है। तो आप कह सकते हैं कि 90 हम में हम से मुराद मक्का वाले हैं। कहानी सुनाकर दूसरों को नसीहत करना ये भी यहाँ से पता चलता है, क्योंकि ये बहुत ही खूबसूरत बात होती है कि इंसान दूसरे के हालात से समझे। आज भी लोग कहानियाँ सुनते हैं, लेकिन पहली बात है कि वो सच पे मबनी नहीं होती। दूसरी बात है कि उसमें एक सच में कई झूठ मिलाए होते हैं। फिर अगली बात यह है कि उन कहानियों के अंदर कुछ इस किस्म के किरदार पेश किए जाते हैं कि जो शैतान के मकासद की नशरोइशात करते हैं। हम क्या करें, सच्ची कहानियाँ सुनाएं। पीछे हमने अंबिया कराम के किस्से में हज़रत यूसुफ का किस्सा पढ़ा, किसी भी लव स्टोरी से कम किस्सा नहीं था। लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा कि कोई सूरत यूसुफ पढ़े और किसी लड़की के इश्क में मुब्तला हो जाए। किसी ने सूरत यूसुफ पढ़ी और किसी लड़के के पीछे लग गई, आज तक नहीं सुना होगा। ये कुरान की तासीर है और सच की यही तासीर होती है कि सच को सुनने के बाद इंसान कभी भी अपने आप को हिदायत से दूर नहीं करता। कुरान पाक के इस सफ़र में आप हर दिन अपने दिल को चेक किया करें। क्या मेरे दिल से गुनाहों की मोहब्बत ख़त्म हो रही है? क्या मैं अपने दिल मरे इन सारी चीज़ों को पीछे कर रही हूँ? आप देखिए कि पिछले सबक की जो आखिरी आयतें थी ना, वो जन्नत और जहन्नम के बारे में थी। वहाँ अल्लाह ताला की दो मुतज़ाद सिफ़ात का तज़किरा था। वहाँ जन्नत और जहन्नम के मुख्तलिफ दर्जों की बातें थी। यहाँ अब कौमों के नाते से अंबिया कराम को दो मुख्तलिफ रूप दिखाए जाते हैं। हम सबको दो रूप दिखाए जा रहे हैं, एक तरफ नबी, वक्त के ख़िलाफ़ चलने वाले, मुआशरे की दौड़ से पीछे रहने वाले, ना समझ में आने वाला तर्ज ज़िंदगी रखने वाले, और दूसरी तरफ चलो तुम उधर को हवा हो जिधर की। अल्लाह ताला ने पिछले सबक में शैतान के मुखलसीन पर वार ना होने की हमें बात बताई, यहाँ मुखलसीन का हाल और उनका अंजाम बताया जा रहा है। हमने देखा कि खालिस होने की तरह मुखलस बंदा मुख्तलिफ हालात में अपनी चमक नहीं खोता, लेकिन आर्टिफिशियल जेवर बहुत दिन नहीं चल पाता। हाँ, उसकी केयर अच्छी करें तो बहुत दिन तक भी चल सकता है। हम सब इन सारी बातों को सुनते वक्त सोचें कि मेरी चमक कितनी है, मेरे अंदर इखलास कितना है। क्या मैं लोगों को खुश करने के लिए काम करती हूँ या लोगों की नाराज़गी से डर जाती हूँ? फिर इसी तरह आप देखिए कि हमने पढ़ा था कि जहन्नुम के 7 दरवाज़े हैं, 7 दर्जे हैं। अगर उससे रेलेवेंट बात यहाँ आपको नोट करवा दूँ तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा कि जहन्नुम में जितने मुख्तलिफ किस्म के लोग जाएंगे उन सब के आमाल बड़े फ़र्क होंगे। अल्लाह ताला कभी किसी पे जुल्म नहीं करता। जितना बड़ा गुनाह होगा दुनिया में उतनी गहरी जहन्नुम में जाएंगे। अगर आप जहन्नुम को एक तंदूर से सोच लें, हालांकि हमें नहीं पता वो कैसी होगी, लेकिन तंदूर के ऊपर ऊपर गर्मी कम होती है, जितनी गहराई में जाते जाएं उतनी बात नीचे जाते जाएं तो ख़राब होती है। अंबिया कराम की कौमें असल में वो कौमें होती हैं, वो लोग हो जाते हैं कि जिनको किसी भी तंदूर के अंदर आग की लकड़ियों की तरह जलाया जाता है। सबसे गहराई में जाने वाले होते हैं। इकरमा एक मुफस्सिर है, कहते हैं कि जहन्नुम के 7 तबके हैं। जहन्नुम, लजा, खुतमा, सईर, सकर, जहीम और हाविया। कहते हैं कि एक दरवाज़ा यहूद का है, यानी 7 दर्जों में 7 मुख्तलिफ किस्म के लोग, एक से यहूद, दूसरे से नसारा, एक से साबी, एक से मजूसी, साबी बेदीन और मजूसी फायर वर्शिपर, एक मुशरिकों काफिरों का और एक मुनाफिकों का और एक अहले तौहीद का। सिर्फ अहले तौहीद वालों को छुटकारे की उम्मीद है, बाकी सब नाउम्मीद हो चुके। तिर्मिज़ी की रिवायत है कि जहन्नुम के 7 दरवाज़े हैं, जिनमें से एक उनके लिए है जो मेरी उम्मत पर तलवार उठाए। इसी आयत की तफसीर में इब्ने अबी हातिम में आता है कि बाज़ दोज़खियों के टखनों तक आग होगी, बाज़ की कमर तक, बाज़ की गर्दनों तक, और गुनाहों की मकदार के हिसाब से। इसके बरक्स आप देखिए कि जन्नत की बात है और जन्नतियों की खूबियों की बात है, ये तो वहाँ जाके होगा। एक बड़ी क़यामत जो आखरत में होगी, नबियों की ज़िंदगी में उसकी एक छोटी सी झलकी पेश कर दी जाती है। अंबिया कराम के निकलते ही कौमों पर जो अज़ाब की कैफियत तारी कर दी जाती है ना, वो असल में उस आने वाली क़यामत की एक छोटी सी बात होती है। तो लिहाजा हम सारे इन किस्सों को पढ़ते सुनते वक्त अपना मुहासबा कर सकते हैं, अगर आज के दौर में नबी आते तो मैं किधर होती, क्या अंबिया कराम के मिशन आपकी दावत में शामिल होती या आपके रास्ते में रोड़े अटका रही होती। और आपने ये तो पढ़ ही लिया कि अल्लाह के नबियों का साथ देने वाले लोग जिस्म के नहीं रूह के तकाज़ों पे नज़र रखने वाले होते हैं। फिर आप देखिए कि यहाँ फ़रिश्तों के आते ही सलाम करने की बात पे भी थोड़ा सा गौर कर लीजिए। फ़रिश्तों को किसी काम का गुनाह या सवाब नहीं होता, और ना उनको इस तरह से शरीयत पढ़ाई जाती है जैसे मुसलमानों को पढ़ाई जाती है। इसके बावजूद फ़रिश्तों ने आते ही सलाम किया। सवाल पैदा होता है कि उनको किसने सिखाया? फितरत। फितरत का तकाजा है कि इंसान जब दूसरों को मिले तो उनको अपने से सलामत रखे कि तुम्हें हमसे कोई तकलीफ़ नहीं होगी। फिर आप देखिए कि फ़रिश्ते चूँकि हज़रत लूत की कौम को अज़ाब देने आए थे, लेकिन हज़रत इब्राहिम को बेटे की खुशखबरी देने आए थे, तो सलाम करके उन्होंने हज़रत इब्राहिम को तसल्ली दिला दी। और इसी तरह जन्नत में भी फ़रिश्तों की तरफ से जन्नतियों को सलाम का पता चलता है, तो गोया कि सलाम करना फ़रिश्तों की भी खूबी है इंसानों की तरह। फिर दूसरी बात है कि फ़रिश्तों को देखकर इब्राहिम क्यों डरे? पहली वजह, बग़ैर इजाज़त के आए थे। हम भी जब किसी के सर पे पहुंच जाते हैं बग़ैर इजाज़त के, तो उसको बाद हमसे खौफ आ जाता है, इंतहाई नागवार हरकत है। अब तो खैर इसके कई और तरीके बन गए हैं, लेकिन कभी भी किसी के घर बग़ैर इजाज़त के ना जाए, बाहर खड़े रहें। अगर आपको बड़ी मजबूरी है 10-15 मिनट वेट कर लें कि इसके बाद जाऊंगी, लेकिन ये ना कहें कि हम आ गए हैं, दरवाज़ा खोलो ना, अगला आपको अंदर बुला सकता है और ना आपको बाहर कर सकता है। फिर इसी तरह आप देखिए कि ऐसे वक्त में आए जबकि अमूमन मुलाकात का वक्त नहीं था। इससे भी पता चलता है कि जब भी किसी से मिलें तो वक्त का ख्याल रखें, पहले से बात सेट की हो तो आसान होती है। फिर आप देखिए एक और वजह, मुफस्सरीन कहते हैं कि फ़रिश्तों के ऊपर ना तो सफ़र की थकन थी जिससे लगे कि ये मुसाफिर हैं, और ना उनकी शक्लें जानी पहचानी थी। जैसे जैसे पाकिस्तान में एकदम कोई किसी जापानीज़ फीचर्स वाले को देख ले तो घबरा जाएगा, तो फ़रिश्तों को इतना फ्रेश देखकर उस दौर की रिवाज के ख़िलाफ़, क्योंकि मुसाफिर जब आते थे तो उनके चेहरों पर सफ़र की तकलीफ़ होती थी, इस वजह से इब्राहिम अलैहिस्सलाम डरे। और इससे एक बात पता चलती है कि फ़रिश्तों को देखकर पता ही नहीं चला कि फ़रिश्ते हैं, तो गोया के अंबिया कराम गैब नहीं जानते। फिर इसके बाद आप देखिए कि क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम को इस बात पे हैरत जो हुई कि बच्चा मेरे होगा, क्या ये उनका अल्लाह की रहमत से मायूस होना था? तो आप कहें कि ये उनके ईमान की कमज़ोरी नहीं थी, बल्कि उनके मुँह से एक ऐसी बात निकली जिसने उनका बशर होना साबित किया, दिल अल्लाह पर मुतमईन था। इधर आप कह सकते हैं कि ये ईमान की नहीं, बेयकीनी की कैफियत थी, जिसको हमारे यहाँ क्या कहते हैं, उन्हें अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। आज भी आप देखिए किसी को 80 साल की उम्र में बच्चे की उम्मीद लग जाए तो शुरू में तो यकीन नहीं आएगा ना कि सारी ज़िंदगी तो ये खबर नहीं मिली, आज कहाँ से मिल गई। पता क्या चला कि ईमान वाला हर लम्हे मुतमईन होता है अल्लाह के फ़ैसलों पर, और मायूसी गुमराह लोगों का शेवा, ये भी पता चलता है 56 से। ईमान एंड होप, बस एक ही चीज़ के दो नाम है। मोमिन हमेशा होपफुल होता है क्योंकि उसको अल्लाह की अला कुल्ली शयीन कदीर होने पर यकीन होता है। इससे एक और चीज़ भी सीखने की, और वो क्या कि ज़िंदगी में हमेशा पॉजिटिव अप्रोच रखें, बड़े से बड़े इम्तिहान में से आराम से गुजर जाएंगे, बस अंधेरे दिनों में रोशन दरवाजे को देखते रहे। जो नेगेटिव होता है ना, वो मौजूद चीज़ों से भी फ़ायदा नहीं उठाता। देखिए, ज़िंदगी के सफ़र में बहुत से टर्निंग पॉइंट्स आएंगे। कभी आपने पहाड़ी इलाकों में सफ़र किया ना, दो दो तीन तीन मील तक आपको टनल्स में से गुजरना पड़ता है। नॉर्वे में आम बात है, मेरे लिए 6-7 किलोमीटर की भी एक टनल आती है जब हम ओस्लो से मोस्ट जाते हैं। माइट भी इससे कम हो बेश हो, लेकिन मेरा गुमान है। और मैं अक्सर जब वहाँ से गाड़ियाँ गुजरती हैं तो मैं सोचती हूँ कि अगर ये सब लाइट सिस्टम इनका बंद हो जाए और गाड़ी की लाइटें भी बंद हो जाए तो ये तो हमारी कब्र बन जाए। बिल्कुल ज़रा पलट ही नहीं सकते अंदर। बाज़ तो टनल बहुत बड़ी हैं, पता भी नहीं चलता वो कब टनल में। लेकिन ज़िंदगी के सफ़र में टनल्स आते हैं। इसी तरह बहुत सारे राउंड अबाउट्स भी आते हैं, टर्निंग पॉइंट्स। बंदे मोमिन पुर उम्मीद रहता है। आप कह सकते हैं कि इस्लाम डिप्रेशन फ्री ज़िंदगी देता है बंदे को। डिप्रेशन है ही अल्लाह की रहमत से मायूस होना। और जो लफ्ज़ अल्लाह ताला ने इस्तेमाल किया ना यहाँ, ये अमेजिंग है। कनूत, किसी मामले का तारीक पहलू देखना, तारीक सोच, नेगेटिव अप्रोच जिसको आप कह सकते हैं। सूरत यूसुफ आयत 87 में भी हम पढ़ चुके कि अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होते मगर काफिर लोग। कभी भी आपकी ज़िंदगी में बहुत से मसाइल आ जाए ना, तो फ़ौरन ढूंढिए उसी के करीब कहीं मवाके भी रखे होंगे। मसाइल के अंदर से ही अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं। प्रॉब्लम्स इंसान के दिमाग को इतना ज़्यादा स्टिमुलेट कर देते हैं कि उसको वो चीज़ें भी दिखने लगती हैं जो आम हालात में नहीं दिखती। आप आजमा के देखें, खुशी वाले घर में आप बैठे होंगे ना, उस वक्त हम सोच रहे होते हैं ना कुछ, हम बस किसी और ही ख्याल में होते हैं। लेकिन दुख तकलीफ़ वाली जगह में है ना, तो आपका दिमाग जो वो कई तरह से इधर से उधर चल रहा होगा। तो सारी बातों को लेकर आप इस कौम के हाल को देखिए, एक ही वक्त में खुशी और गम की बात है। आगे क्योंकि अब कौम में लूत की बात हो रही है, तो इससे पता चलता है कि फ़रिश्ते एक ही हैं। लेकिन कभी अल्लाह ताला उनके ज़रिए हमें खुशी की खबरें देता है और कभी गम की खबरें देता है। हमें अपने लिए क्या लेना है इस सारे वाक्य से, कि अपना मुहासबा करें कहाँ खड़ी हूँ। अगर चंद नेक लोगों के बीच में रहती उठती हूँ तो क्या मैं नेक बन गई हूँ? और अगर बुरे माहौल में घिर गई हूँ तो क्या उनकी बुराई ने मुझे भी बुरा बनने पे माइल कर दिया? अल्लाह के नबी सल्लम ने ना मक्का में अपना रंग छोड़ा ना मदीना में छोड़ा। बात यही है कि एक इंसान हालात में रिएक्ट कैसे करता है, बस इतनी सी बात है। आप देखिए कि हज़रत खदीजा ने अल्लाह के नबी का साथ तब दिया जब लोगों ने आपको झुठलाया, तो अल्लाह क्यों ना उनको ऐसे मोहल्लात की खबरें दे कि जहाँ शोर व शगफ नहीं होगा, जहाँ तकलीफ़ नहीं होगी। जो मुश्किल वक्त में अल्लाह के रास्तों पे जमे रहते हैं ना, अल्लाह ताला उनकी मुश्किलों को आसानियों में बदल देता है। नबी सल्लम अपने सहाबा के पास आते हैं और उनको हंसता हुआ देखते हैं एक मौके पे। फिर कहते हैं, लोगों, जन्नत और दोजख को याद करो। यानी इतना हंसने की खुश होने की ज़रूरत नहीं है। जन्नत को याद करोगे तो नेकी की रग़बत आएगी, जहन्नम को याद करोगे तो अपने गुनाह बुरे लगेंगे। इब्ने अबी हातिम की एक रिवायत में आता है कि आप बनू शैबा के दरवाजे से सहाबा के पास आकर कहते हैं, मैं तो तुम्हें हंसते हुए देख रहा हूँ। ये कहकर वापस मुड़े और हतीम के पास से ही उल्टे पाँव फिर हमारे पास आ गए। यानी अभी ये बात कहकर जा रहे थे, हतीम के पास पहुँचे, वही जगह जो हरम के खाना काबा के अंदर ही होती थी, वापस आए और कहने लगे कि मैं अभी जा ही रहा था कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम आ गए और कहते हैं, नब्बे इबादी अन्नी अना गफूर रहीम, और अगली आयत जो पढ़ चुके हैं। तो गोया कि एक बंदा कभी भी गाफिल नहीं रह सकता, मुझे तो ऐसे ही लगता है। हदीस में आता है कि अगर बंदे अल्लाह की माफ़ी को जान जाए तो हराम से बचना ही छोड़ दें कि कोई बात नहीं, मेरे रब ने मुझे माफ़ कर देना। और अगर अल्लाह के अज़ाब को मालूम कर लें तो अपने आप को हलाक कर लें कि हम कभी ही नहीं बचेंगे। वमै यक़्नतु मिन रहमति रब्बिही लद्दालून, अल्लाह हमें दुआल होने से बचा ले। अब अगली आयतों में फ़रिश्तों के हज़रत इब्राहिम से उठकर हज़रत लूत के पास जाने का तذکرہ और नबियों के पास अम्बिया कराम का आना, सरासर अल्लाह ताला का फ़ैसला होता है। और वो हालात होते हैं कि जिस वक़्त फिर नबियों को हकीकत में सपोर्ट की ज़रूरत होती है। क्या है अब खबर? अब आगे आप देखिएगा कि इसमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जिनको इतनी बड़ी खुशखबरी मिल गई, इस खुशखबरी को पाकर भी उनका रवैया क्या था? फरमाया, قال فما خطبكم أيها المرسلون, आयत 57। आपने पूछा, ए भेजे हुओ, तुम्हारी मुहिम क्या है? खत्ब मुहिम के मानों में, ख़ास मौका, किसी ख़ास इरादे से किसी जगह जाना, यानी क्यों तुम आए इधर? व्हाट इज़ द रीज़न, तुम्हारे आने की वजह क्या है? قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين, उन्होंने कहा मैं भेजा कि एक मुजरिम कौम की तरफ। अच्छा कौन? इल्ला आल लूत, सिवाय आले लूत के, क्योंकि इन्ना लमुनजूहुम अजमाइन, हम इन सब को ज़रूर बचा लेंगे। यानी हज़रत इब्राहिम के चेहरे पे परेशानी के असरात देखे कि वहाँ तो मेरा भतीजा भी रहता है और उसको क्या होगा, का फिक्र नहीं करें, उनको बचा लेंगे। लेकिन इल्लम रतहु कद्दरना, सिवाय इसकी बीवी के हमने अंदाज़ा ठहरा लिया, क्या इन्नहा लमिनल गाबिरीन, के यकीनन वो पीछे रहने वालों में से होगी। क्यों? इसलिए कि नबी के मिशन से पीछे थी। पीछे भी बात हुई, हज़रत लूत की शादी एक गैर कौम की औरत से हुई। हज़रत लूत तो बाहर से भेजे हुए थे उस कौम में, लेकिन वो कौम उसी कौम का हिस्सा थी और उनकी बीवी अपनी कौम से बहुत प्यार करती थी, तो वो ना तो जानिया थी ना फासिका थी, लेकिन नबी की बीवी का जो क्राइटेरियन होना चाहिए उस पर पूरी नहीं उतरती थी। आगे सूरत अलअज़ाब में हम पढ़ेंगे कि अल्लाह जब किसी को नेमत बड़ी देता है तो उस नेमत का सहारा भी इंसान के अंदर हो। बस दफ़ा हम नेमतें मांगते हैं, फिर मिल जाती हैं, फिर हम उसको अफोर्ड ही नहीं कर सकते। मसलन आप देखिए कि यहाँ थोड़ी सी बात करूँगी औरत और मर्द के दीनी मेयार की। मैं एक सिर्फ छोटा सा मिसाल आपको दूंगी। ऑफ़ कोर्स ये मुमकिन ही नहीं है, ना तब किसी नबी ने दुनिया में आना है, ख़त्म हो गया सिलसिला और एवरीथिंग इज़ डिसाइडेड। लेकिन अगर किसी पाक दामन अच्छी बच्ची से, ऑफ कोर्स जिसका मिजाज बिगड़ा हुआ ना हो, उससे कहा जाए कि क्या तुम ये पसंद करोगे कि तुम किसी नबी की बीवी बनो, क्या जवाब आएगा अंदर से? सहाबी की बीवी बनो। हम में से कोई भी सना नहीं कर सकता कि हमारे शौहर दीन के वो दर्जे पे हों जिसको आप कह लीजिए कि सहाबा वाला। कमोबेश हम एहतियात के साथ सहाबा वाली बात तो कर ही सकते हैं ना। और अगर प्रैक्टिकली हमारे शौहर सहाबा वाला रवैया इख्तियार कर लें तो हाल क्या होगा हमारा? यकीन करें, मैंने एक जुमला पहले भी शायद बोला, आज फिर बोलूँगी शौहर से इस मौके पे, कि हम दुआएं करते हैं कि हमारी बच्चियों को मुत्तकी मिले, लेकिन मुत्तकियों के साथ रहना आसान काम नहीं होता। जितना कीमती पत्थर होता है ना, उतना मजबूत सांचा जब तक नहीं होगा वो पत्थर गिर जाएगा। आपने फील किया होगा, डायमंड को ऐसे ही पकड़ के लोहे के रिंग्स में डाल के नहीं पहना देते, अंदर झड़ देते हैं कि ये गिरे ही ना। जबकि आप आर्टिफिशियल रिंग्स लें, एक लेंगे तो आप देखेंगे कि वो झड़ जाएगी, क्वालिटी का फ़र्क होता है, कहीं आर्टिफिशियल भी नहीं झड़ती। अब आप और मैं, हम औरतें हैं ना, हम ये चाहते हैं ना कि अगर हमारे मर्द नेक हों। अब ऑफ कोर्स हमारी सबकी शादियां हो चुकी हैं, अगर जो भी मैरिड बहनें हैं, अब आप इसी शौहर को चाहती हैं कि नेक हो, आप क्या करें? आप अपने ईमान को बढ़ाएं। ये अल्लाह का फैसला है, अत्तय्यिबातु लित्तय्यिबीन और अल्खबीसातु लिल्खबीसून। और जिनके भी शादियां नहीं हुई वो ख़ुद से पूछें, किस दर्जे का नेक शख्स मुझे चाहिए? अगर आपको वाकई नेक चाहिए, रियल नेक, तो फिर आपको भी रियल गोल्ड बनना पड़ेगा, वरना बाद में बड़ी मुश्किलें आएंगी। दिन में 5 बार आपकी लड़ाई होगी अपने शोहर से, आम दिनों में नहीं होगी, आप खुश होंगी, उस दिन होगी। आप शॉपिंग पे और वो कह रहे हैं हैव टू गो फॉर प्रेयर, मुझे जमात पे जाना है, तुम कहती हो शॉपिंग पे ले जाओ। कम से कम 5 दफ़ा लड़ाई होगी अगर खोटा ईमान होगा हमारा, और फिर दूध का दूध पानी का पानी आ जाता है। तो जब दुआएं मांगे ना अपने बच्चों के लिए भी, तो सोच के मांगे, फिर जो दुआएं मांगते हैं ना, फिर उसके इख्तमाम भी कीजिए। क्योंकि नेमते लेना बहुत आसान है, उनको संभालना बड़ा मुश्किल है। जब अल्लाह के नबी मक्का से मदीना जा रहे थे, कितना ठोक बजा के लोगों ने बात कर दी। हज़रत अब्बास ने कहा, तुम इसको ले के तो जा रहे हो, ले जाकर छोड़ना है तो भी छोड़ दो, हम इसके दीन के दुश्मन हैं लेकिन इसकी जान हमें बड़ी प्यारी है। हज़रत अब्बास उस वक्त दीन पे नहीं थे, लेकिन चचा बन के बोल रहे थे आपके हक में, क्योंकि उनको पता था कि जिन्होंने मदीना में अल्लाह के नबी को बुलाया, ये तो इन्होंने जान को जोखों में डाल लिया। अब ये वो आराम तलबियाँ इनसे नहीं हो सकती, तो जब भी कोई नेमत आए, अब यहाँ हजरत लूत की बीवी है, कितना बड़ा ऑनर हो सकता था। ये पढ़ते हुए इस वक्त मैं अपने दिल में दर्द महसूस कर रही हूँ उस औरत के लिए। कुरान रहती दुनिया तक रहने वाली किताब में इस औरत का नाम यहाँ से चल रहा है, पीछे भी पढ़ा, और आप देखेंगे 28वें पारे की आखिरी सूरत सूरत तहरीम में फिर इसका जिक्र आएगा। अल्लाह ने इसको क्या कहा, फकानत मिनल गाबरीन, और इधर क्या कहा, इन्नहल्ल मिनल गाबरीन, पीछे रह जाएगा, कोई शौहर नहीं बचाएगा हमें, जितने मर्जी वो नेक हो जाएं, जब तक हम खुद उस रास्ते पे नहीं चलेंगे। हम कहते हैं हमारे शौहर बड़े नेक हैं, हमारे ससुर बड़े नेक थे, हमारे अब्बा जी नाना जी दादा जी बड़े नेक थे, पहले ये बताइए बाय द वे आप क्या हैं? नहीं, हम तो बस सब गुनाहगार बंदे हैं। तो जिसके अमल ने उसको पीछे छोड़ा, उसका नसब उसको आगे नहीं लाएगा। अब आगे अगली आयतों में देखिए, बिल्कुल फिर कहानी कंटिन्यू होती है। फलम्मा जाअ लूतिनिल मुरसलीन, और जब लूत के घर पहुँचे वो भेजे हुए, यानी फरिश्ते यहाँ से उठे तो उधर गए, अब यहाँ मुकालमा है लूत और फरिश्तों के बीच में। काल इन्नकुम कौमुम मुनकरून, लूत ने कहा यकीनन तुम अजनबी लोग मालूम होते हो, हाल धुलिया और सब फ़र्क है, बताओ भाई क्यों आए हो। कालू बल जी ना कभी माँ कानू फी ही यम तरून, उन्होंने कहा बल्कि हम तो आपके पास वो चीज़ लेकर आए हैं जिसके बारे में ये लोग शक में पड़े हुए। वो क्या चीज़ है? वह आते ना कबिल हक, और हम आए इनके पास कतई फैसला लेकर, हक बात लेकर आए हैं। वह इन्ना लसा देखून, और यकीनन हम सच्चे हैं। सवाल पैदा होता है कि वो किस चीज़ से शक कर रहे थे, पहली चीज़ शिर्क और दूसरी चीज़ होमोसेक्सुअलिटी की मौजूदगी में अल्लाह की रज़ा, यानी उनको इस पर शक था कि हम गलत काम करते भी रह गए फिर भी नहीं पकड़ोगी, अल्लाह के अजाब पे शक करते थे। तो गोया के कह लीजिए कि फरिश्ते वहाँ अजाब लेकर आए जिस अजाब से लोग खुद को पीछे कर रहे थे, और अपने आप को वो समझ रहे थे कि हम बड़े महफूज हैं। ये जो पीछे लफ्ज़ है ना गाबरीन, इसी से उर्दू में लफ्ज़ गुबार भी आता है, गबरा। जब काफ़िला कूच करता है ना तो पीछे जो मट्टी उड़ती है उसको गुबार कहते हैं। कुरान पाक में 27 यानी 27 टाइम्स हज़रत लूत अलैहिस्सलाम का जिक्र है, और आप देखिए जहाँ कौम लूत का जिक्र है वहाँ होमोसेक्सुअलिटी का जिक्र है। और रिवायत में आता है कि फरिश्तों को आता देखा सबसे पहले इनकी बेटी ने, इसलिए आला लूत का लफ्ज़ आया। कहते हैं कि ये कौम अजनबी मुसाफिरों के साथ बहुत बुरा सलूक करती थी इसलिए घबराई। और लफ्ज़ मुनकरून, मुनकर की जमा, लिबास सफ़ेद थे, चेहरे रोशन थे, सफ़र के असरात नहीं थे। और यहाँ जो लफ्ज़ है ना यम तरून, इम तेरा से है, इसका रूट क्या होगा? मुश्किल लफ्ज़ लग रहा है, मिरिया, मीम रा या। और ये जो लफ्ज़ है ना बल जी ना का, तो बल अरबी ज़ुबान में इदराब के लिए आता है, पिछली बात की नफ़ी और अगली बात की ताकीद, जिसको उर्दू में आप कहते हैं बल्कि। ठीक है, बात वो नहीं है जो तुम समझ रहे हो, और हम हक लेकर आए हैं यानी हक वाले की तरफ से आए हैं। वही बात याद रखें आयत 7 और 8 में कि फरिश्ते जब भी आते हैं हक के साथ आते हैं, यानी अल्लाह का हुक्म लेकर आते हैं। आयत 65 में देखिए अब अल्लाह अपने नबी को कैसे बचाता है। फसरी भी अहली कभी क़त इम मिनल लैल, तो आप अपने घर वालों को ले जाइए रात के एक हिस्से में। वत तबीयत बारहुम, और आप इनके पीछे पीछे जाइए, यानी घर वाले आगे हैं तो आप पीछे जाएंगे। वला यल्तफित मिनकुम अहदुन, और आप लोगों में से कोई भी पीछे मुड़कर ना देखे। आपको तो हज़रत लूत के साथ कितने लोग गए थे, कौन गया था? सिर्फ दो बेटियां, एक मर्द भी इन पर ईमान नहीं लाया था। पूरी बस्ती में लूत के घर के सिवा कोई ईमान वालों का घर नहीं था, इससे भी ज़्यादा कोई अजनबियत होगी। फिर लूत भी वैसे ही हो जाते जैसा माहौल था, एसिमिलेट भी तो करना ही था। फिर बेटियों के बाप थे बेचारे, रिश्ते भी तो कल करने थे। खुद पीछे बेटियां आगे, ये वत तभी अदबारों को नोट कीजिए। जब भी अम्बिया कराम को हिजरत का हुक्म दिया जाता है सब लोग पहले निकल जाते हैं, नबी सबसे आखिर में निकलता है। इसकी दलील नबी सल्लम सब जा चुके हैं और अबू बकर और रास्ता देख रहे हैं, लेकिन जब बिल आखिर नबी सल्लम को हुक्म मिला तो फिर अबू बकर गए। क्यों? क्योंकि नबी जो होते हैं ना किसी बस्ती में रूह की तरह होते हैं। जब जिस्म से रूह निकल जाती है ना तो उस जिस्म को डंप कर दिया जाता है, मिट्टी में डाल देते हैं ना जाके कब्र में। इसी तरह जब नबी किसी बस्ती से निकलते हैं ना तो वो बस्ती बेजान है, अब अजाब का फिर फैसला हो जाएगा। तो नबियों को सबसे पीछे रखा। अब सवाल पैदा होता है कि वला यल्तफित मिनकुम अहद, तुम पीछे मुड़ के ना देखना। ये जो लफ्ज़ है ना यल्तफित, उर्दू में भी हम बोलते हैं इल्तफाफ, ठीक है। क्यों ना पीछे मुड़ के देखना? नंबर एक, मंजर की हौलनाकी। भाई देखिए, जिन पे अजाब आना है पीछे, वो कोई बड़े प्यार से तो नहीं आएगा। फिर दूसरी बात है, पीछे देखना मोहब्बत की अलामत होती है। जब अल्लाह के लिए कोई चीज़ छोड़ देना तो फिर उसकी तरफ पीछे पलट के भी ना देखें। हाय कैसी प्यारी तस्वीरें थी, हम क्या लगते थे। हाय अच्छा, ज़ाया कर दूँ इन मूवीज़ को, इन फिल्मों को ज़ाया कर दूँ। याद रखिए कि जब हम पलट पलट के अपनी पिछली ज़िंदगी की यादगारें देखते हैं ना, तो कई दफ़ा उन गुनाहों की कराहत ख़त्म हो जाती है। मुझे कभी समझ नहीं आती, लेकिन शायद मुझे भी ये बात काफ़ी बाद ही समझ आई होगी, तो लोगों को भी बाद में ही आएगी। मैं अक्सर सोचती हूँ कि हम अपनी यादगारें क्यों रखते हैं। बस आप देखिए, हम अपनी खुशी गम के मौक़ों को मुकैद करके रखते हैं ना। मैंने लोगों को सुना है, कहते हैं नहीं चलो तस्वीर पास होती है कोई याद आता है। आप ज़रा किसी अपने प्यारे को सोचिए जिसको आप खो चुके, क्या आप पसंद करते हैं कि आप घर जाएं और उनकी तस्वीर खोल के देखें? क्या खुशी होगी? याद आएंगे, उनकी तस्वीर आपकी आंखों में आएगी, वो सारा वक्त याद आ जाएगा। इस्लाम कहते हैं कुल्लू मन अलैहा फान, सब फ़ानी मिटेगा। हम फ़ानी लोगों की यादें जमा करते हैं ताकि इनको देखें और रोगी होते रहें। चलिए ये तो मौत की बात थी, खुशी की यादें, शादी की बातें और जो भी है, जो आप शादी वाले दिन थे आज वो हैं, उतने हसीन आप लगते हैं, वो हुसन वो खूबसूरती वो है। तो क्या करना जब पहले अच्छे थे और अब ख़राब है? सिर्फ वो यादें रखें जो आप अच्छे हैं, समझ रहे बात को। आप देखिए कि इंसान आम ज़िंदगी गुजारता है ना, फिर उसकी ज़िंदगी में बहुत सारे लूप होल्स होते हैं। दिन ब दिन कुरान उसका तज़किया करता है, तज़किया करता है, फिर उसका किरदार खूबसूरत होता है। हमारी ये जो बॉडी है ना फिज़िकली, ये दिन ब दिन कशिश खो रही है, माने कि ना माने। जो मासूम बचपन जवानी का हुसन होता है वो 25-30 साल में नहीं रहता, 25 में जो होता है वो 30 में नहीं रहेगा, इल्ला माशाल्लाह। लेकिन किरदार का हुसन दिन ब दिन फैलता है। मैं पूरे यकीन से आपको कह सकती हूँ, कुछ साथियों को मैंने पिछली ज़िंदगी में जब देखा, कुरान पढ़ने से पहले की शख्सियतें और कुरान पढ़ने के बाद की शख्सियतों में वही फ़र्क है कि जो किसी के आज के और शादी के दिन खूबसूरत लगने से फ़र्क हो। किरदार आगे आगे खूबसूरत होता है अगर तरबियत का और तज़किए का मरहला जारी रहे। सब कीने खपट ख़त्म हो जाएंगे, सब बातें ख़त्म। मैंने हौलते हुए लोगों को बाद में इतना कूल एंड काम होते देखा कि यकीन नहीं आता मुझे कि ये वही सिस्टर्स हैं। कुरान इतना खूबसूरत कर देता है, लेकिन जिस्म पीछे रहने वाली चीज़ वो दिन ब दिन ढलता है। यादें रखनी है अपनी तो किस चीज़ की रखें? अखलाक की यादें, किरदार साजी की यादें। बहरहाल का वम दो है सुतो मरून, चले जाइए जहाँ से आपको हुक्म हुआ। ये भी वजह थी पीछे ना देखने की कि बस कह दिया अल्लाह ने तो ख़त्म। किधर जाने का हुक्म हुआ था? कुछ कहते हैं उर्दन शहर की तरफ, कुछ कहते हैं शाम की तरफ। और बिल्कुल ऐसे नहीं लगता कि मंजर कशी की जा रही है, मामले की शिद्दत को वाजे किया जा रहा है।